हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत रंधावा एक दिन पहले जाकर अपने दोस्त अमन को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि उसकी गाड़ी से जो बेहद खूबसूरत लड़की टकराई थी वो कोई और नहीं, उसके जिगरी दोस्त अमन की बीवी थी। और जल्दी ही विक्रांत तारा को अमन के पास ले गया था। अमन ने विक्रांत का शुक्रिया अदा करा था और तारा को सही सलामत देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अमन ने तारा को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था और खुद विक्रांत के साथ बैठ गया था और बोला था कि तू तो कल आने वाला था, तो फिर आज अचानक से कैसे? तब विक्रांत ने बताया कि हो सकता है कि तेरी बीवी की जान बचाने के लिए ही ऊपर वाले ने मुझे आज यहाँ भेज दिया, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। विक्रांत की बात सुनकर अमन मुस्कुराने लगा था और बोला था, अच्छा हुआ यार, मेरी बीवी को तू मिला, अगर कोई और होता तो न जाने क्या करता इस लड़की को। मैं इतना मना करता हूँ लेकिन ये सुनती नहीं, ये अच्छी तरह से जानती है कि मेरी सांसें इस लड़की में अटकी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। अमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो विक्रांत के सामने बोले बिना नहीं रह पाया था। अंदर ही अंदर, जबकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि तारा को खोने का डर उसे अंदर तक हिला गया था। आज तारा कुछ घंटे के लिए उससे अलग हुई थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके जिस्म से उसकी आत्मा अलग हो गई हो। विक्रांत ने अमन के हाथ पे हाथ रखा था और बोला था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी अब बिल्कुल ठीक है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इस वक्त किसी की मदद कर रही थी, वो भी रात के दूसरे पहर में, थोड़ा मुझे सुनकर अजीब लगा था। तब अमन ने कहा, वो उसमें आधा झूठ बोल रही होगी और आधा सच में, मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूँ, जरूर उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी, बट डोंट वरी, उसका पता मैं कल तक लगा लूँगा। मैं भी जानता हूँ कि उसने मुझे आधी स्टोरी सुनाई है, मदद तो उसने जरूर की होगी किसी न किसी की, लेकिन इसने जो मुझे कहानी सुनाई है इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तारा, जो कि अपने कमरे में थी और विक्रांत का शुक्रिया अदा करने के लिए बाहर आ रही थी, तो जैसे ही उसके कानों में अमन की बातें पड़ी तो वो सोच में पड़ गई और हैरान रह गई थी कि इतनी जल्दी उसका पति उसे इतना जानने लगा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बहाना बनाएगी, क्योंकि उसने तो किसी के एक्सीडेंट का बहाना बनाया था, लेकिन उस वक्त से तो अमन ने हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन अब उसके बातों को सुनकर ये लग रहा था कि अमन ने सिर्फ उस वक्त उसको टालने के लिए ऐसा कहा था। तारा बिना विक्रांत का शुक्रिया अदा करे उल्टे पांव अपने कमरे में चली गई थी और सोचने लगी थी कि उसे कल क्या करना है, ऐसी क्या एक्सक्यूज देनी है कि जिससे अमन को उस पर शक ना हो। और वैसे भी कल शाम की तो बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी जिसमें विक्रांत रंधावा आने वाला था, साथ ही साथ कल अमन की कंपनी की वर्षगांठ भी थी। तारा इसी के रिगार्डिंग कुछ प्लान्स बनाने लगी थी और क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा थक गई थी तो बिना अमन का इंतजार करे वो सो गई थी। वही अमन कितनी देर तक विक्रांत से अपने बचपन की यादों को ताज़ा करता रहा था। करिश्मा जी भी उन दोनों को कंपनी दे रही थी। जल्द ही करिश्मा जी ने विक्रांत के लिए खाना लगा दिया था और कहा था कि तू यहीं रहेगा, तू आज के बाद कहीं और जाने की सोचना मत, हम अच्छी तरह से जानते हैं परिवार के नाम पर तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं, और वैसे भी तुम्हारा पूरा परिवार बाहर विदेश में ही रहता है, तो इसीलिए जब तक तुम यहाँ रहोगे हमारे साथ रहोगे और इस घर को तुम अपना ही घर समझोगे। विक्रांत ने करिश्मा जी के प्यार के आगे अपने घुटने टेक दिए थे, जबकि वो किसी होटल में रहना चाहता था, वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब करिश्मा जी ने अपनेपन से कहा था तो वो मना नहीं कर पाया था, और करिश्मा जी ने उसका कमरा तो पहले से ही तैयार करवा रखा था तो विक्रांत को ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया था और अमन भी करिश्मा जी को आराम करने को कहकर खुद अपने कमरे में चला गया था, और जैसे ही उसने तारा को चादर ओढ़कर सोते हुए देखा तो उसके माथे की सलवटें उभर आई थी, क्योंकि उसका इरादा तारा को प्यार करने का था, वो नहीं चाहता था कि तारा अभी इस तरह से सोए, और वैसे भी आज इतना बड़ा दिन था, तारा उससे जुदा होते होते बची थी, अगर तारा सही सलामत घर नहीं आती और विक्रांत की जगह उसे कोई और मिल जाता और हो सकता है कि कोई कोई काली शक्ति उस पर आक्रमण कर देती तो वो क्या करता? कितने ही उल्टे सीधे ख्याल अमन के दिमाग में आने लगे थे। फिर वो अपनी सोच को आगे झटक कर तारा के पास गया। उसका दिल चाहा कि एक झटके से तारा को उठा दे, लेकिन तारा बहुत ही प्यार से एकदम मासूम मासूम से बने हुए सो रही थी। अमन का दिल ही नहीं किया कि वो उसे उठा दे, क्योंकि वो सोई हुई इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था किसी छोटे से बच्चे की सारी मासूमियत सिमट कर उसके चेहरे पर आ गई हो। तारा को अमन कितनी देर तक उसके पास बैठकर देखता रहा था और मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आज उसकी तारा उसके पास सही सलामत लौट आई थी। अब वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो तारा का पूरा ध्यान रखेगा, उसने सोच लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक पल के लिए भी अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तारा, जो कि गहरी नींद में थी, वो अमन की अपने मुंह पर तपिश अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी, क्योंकि औरतों के अंदर ये अजीब सी शक्ति होती है। अगर कोई उसे पीछे से, आगे से या सोए हुए कैसे भी घूर रहा हो तो उसे एहसास हो ही जाता है कि कोई उसे घूर रहा है। तारा समझ चुकी थी कि अमन उसे बैठकर देखे जा रहा था, लेकिन वो उस वक्त उसे उठाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वापस से चादर अपने ऊपर करते हुए सो गई थी। अमन कितनी ही देर तक तक बैठा हुआ तारा के मुंह को देखता रहा था और फिर वो उसकी भी आंखें भारी होने लगी थी और वो इस तरह से बैठा हुआ तारा का हाथ पकड़कर वहीं सो गया था। वही विक्रांत रंधावा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। न जाने उसे किस चीज की बेचैनी थी जो परेशानी किया जा रही थी। जब से तारा को उसने देखा था, उसका दिल उस पर आ गया था और जब से उसे ये पता चला कि तारा उसके जिगरी दोस्त अमन की बीवी है, तो उसे ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी और अंदर तक उसका दिल टूट गया था, क्योंकि विक्रांत रंधावा ने आज तक किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था। लेकिन तारा को देखते ही न जाने उसे क्या हो गया था। उसका दिल कर रहा था कि तारा को वो बाहों में लेकर प्यार करे, उसे चूम ले, क्योंकि तारा थी ही इतनी खूबसूरत। विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल का क्या करे, क्योंकि आज पहली बार किसी लड़की को देखकर उसके दिल में अजीबोगरीब एहसास हुआ था। अपनी सोचों में गुम विक्रांत की न जाने कब आंख लग गई थी और वो भी सो चुका था। अगली सुबह तारा परी सबसे पहले उठ गई थी, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। एक तो आज वो पूरे ऑफिस वालों के सामने अपने आप को साबित करने वाली थी, क्योंकि अगर उसकी पार्टी में इतनी सी भी कमी रह जाती तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो सकती थी।
और सब के सब उसे टॉन्ट करने से बाज नहीं आने वाले थे, वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। वेल, जल्दी ही तरफ ने एक खूबसूरत सी ड्रेस निकालकर तैयार हो गई थी और वो सीधा अमन के पास गई थी। उसने देखा कि अमन अभी तक सो रहा था। तारा सोचने लगे कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगी, वो बल्कि उस जगह जाएगी जहां पर आज पार्टी होगी, क्योंकि वहां जाकर वो आज सारा अरेंजमेंट खुद अपने हाथों से करवाएगी। उसने सोच लिया था, सभी आदमी से काम वो अपने सामने करवाएगी। वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी उसके किसी भी काम से अमन उससे नाराज हो, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अमन की नाराजगी नहीं। और उसे ये भी तो सोचना था कि वो कैसे अमन को एक्सक्यूज दे कि वो कल रात कहाँ थी, क्योंकि जब तक कि वो अमन को उसके मन के मुताबिक एक्सक्यूज नहीं देगी, तब तक अमन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था और वो अपने सिरे से सच का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। ये बात तारा पारी अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि अमन के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाज़ा तो हो ही गया था कि अमन कब क्या कर सकता था और सोच सकता था। तारा कुछ देर तक अमन को इसी तरह से खड़ी हुई देखी रही थी कि तभी वो पीछे जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अपने ऊपर खींच लिया था और तारा सीधी अमन के ऊपर जा गिरी थी। अमन ने उसे कहा, क्या हुआ, क्या देख रही थी, इस तरह से चोरी चोरी अपने पति को देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तब तारा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया था, मैं किसी और के पति को थोड़ी ना देख रही हूँ, मैं अपने पति को देख रही हूँ और मेरे पति को देखने से मुझे, मैं खुद मेरा पति भी नहीं रोक सकता। जैसे ही तारा ने ये कहा, वो उसके गाल एकदम से लाल हो गए थे। रचना रचना, प्राणव प्राणव प्राणव, धन्यवाद।